मगर आई लव यू मान्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे?
नहीं रौनक, हम सिर्फ दोस्त हैं यार, एंड ये प्यार वगैरह ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे, एंड यू नो ना माय फैमिली विल नेवर अलाउ दिस।
लेकिन मान्या,
आई एम सॉरी रौनक, बहुत अच्छे हो यार, बट
रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे अंधेरे, रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे अंधेरे।
हेलो, कौन? अबे कौन नहीं, कहाँ कहाँ हो भाई? समर बोल रहा हूँ, मान्या की शादी है तो चल रहा है ना? नहीं यार समर, मैं नहीं जा पाऊंगा यार, लेकिन मान्या के लिए कुछ देना था, तू जब चाहेगा तो घर होते हुए आना, ओके? अच्छा ओके ओके, मैं अभी ही आता हूँ, अभी मिलते हैं। ओके मिलते हैं, जल्दी आ। हे रौनक, कैसा है भाई, कितने सालों बाद, हाँ? कैसा है? मैं बढ़िया हूँ यार, तू कैसा है? सब बढ़िया। ये ले, मान्या को दे देना, कहना रौनक ने दिया है। ओके मैं चलता हूँ, अभी शादी में भी निकलना है, फिर मिलते हैं।
हे मान्या।
हाय समर। रौनक नहीं आया?
नहीं यार, वो तो नहीं आ पाया, मगर तेरे लिए कुछ भेजा है उसने, ये लो।
ओके।
पहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है।
डियर मान्या, तुम बरसात की सौंधी खुशबू, मैं बरसात के ओलों सा, जो तुम कुल्हड़ की चाय में जमती तो मैं पानी किसी पतीले का, है हवा सी नरमी तुझ में, मैं सख्त हूं किसी पथरीले सा, जो तुम ठंडी सांस हो तन की तो मैं आँच हूं गरम जंजीरों का, है लकीर दोनों के हाथों में, है लकीर दोनों के हाथों में, मगर मगर मिलन ना किसी लकीरों का, तुम मुमताज हो किसी ताज की तो मैं फकीर हूं तेरी जागीरों का, तो मैं फकीर हूं तेरी जागीरों का, तुम बरसात की सौंधी खुशबू, मैं बरसात के ओलों सा, कि तुम हवा में उड़ती जुगनू, कि तुम हवा में उड़ती जुगनू, मैं अंधियारा हूं उन रातों का, थम जा जो तू मुझ में कहीं, फिर नशा करेंगे हम बातों का, फिर नशा करेंगे हम बातों का, पर दूर है तू, पर दूर है तू, उड़ती पतंग है, न डोड़ न पकड़ने एक कामों का, हवा होता तो साथ चलता, मगर अब कागज हूं तेरे हाथों का, मगर अब कागज हूं तेरे हाथों का, कागज हूं तेरे हाथों का। शादी मुबारक हो मान्या, शादी मुबारक हो, तुम्हारा तुम्हारा अपना रौनक।
लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, बस है जो लगता है के माना, दिल दाही मेरा एक कसूर।
May I have your kind attention, please? Train number 00027, Rajdhani Superfast Express from Lucknow to New Delhi Railway Station is running late by 2 hours.
मैं दिल्ली से लखनऊ गरिमा से आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। ट्रेन कोहरी की वजह से करीब 5-6 घंटे लेट थी। एक अखबार जिसको ऊपर से नीचे मिलाकर कम से कम 5 लोग आंखें गड़ाकर पढ़ रहे थे। साइड लोअर सीट में एक नया नया शादीशुदा कपल था जो दो अलग अलग खिड़कियों से बड़ी तेजी से पीछे छूटती जा रही एक दुनिया देख रहा था। जिस अंकल ने सुबह अखबार खरीदा था वो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रह चुके थे। बस उनको अपने जीवन में एक ही मलाल था कि उनकी टाइम ऊपरी कमाई इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल देश में है। इसलिए आजकल देश में बढ़ते हुए करप्शन को लेकर वो बड़े परेशान थे। सबसे ऊपर वाली सीट पर एक लड़की थी जो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थी। उसकी नजर बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने पर थी जिसमें हीरे हीरोइन के बारे में चटपटा मसालेदार लिखा होता है। हाँ, उसको जो हीरो पसंद था उसके अफेयर वाली बात या खबर को वो मान लेती थी कि अखबार वाले हैं, कुछ भी छाप देते हैं। अभी अभी ट्रेन में हो रहे शोर शराबे से मैं उठा था कि उठते ही अंकल बोले, आजकल के लड़कों की सुबह दिन में होती है। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, अंकल आपके पापा भी यही बोलते होंगे ना आपसे। इस बात पर अंकल फिर कुछ बड़बड़ाए लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मेरा मूड कल रात जब से ट्रेन में बैठा था तब से ही अच्छा नहीं था। मूड तो खैर उससे भी पहले से बहुत खराब था। वैसे तो लखनऊ मेल सुबह 6 बजे ही लखनऊ पहुंच जाती है, इसलिए ट्रेन में कभी चाय चना जोर गरम वाले नहीं पहुंच पाते। वो तो उस दिन ट्रेन इतनी लेट थी कि बरेली के बाद से ही चाय और चना जोर गरम वाले लड़के ट्रेन में आ गए। अभी मैं उठ के आंखें ही मल रहा था कि इतने में चना जोर गरम वाला लड़का आया और सामने से निकला,
था कल महंगाई में आज राजनीति में पता नहीं कौन किसका कास। 5 रुपए का चना जोर गरम खोले सारी बार खाइए चना जोर गरम।
ये गाना गाते हुए जैसे ही मैंने उसको देखा वो मुझे बोलता है कि
5 रुपए के बना दूं, मजा ना आए तो पैसे वापस।
ट्रेन के सफर की सबसे खास बात क्या होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं कभी ट्रेन में बोर नहीं होता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाता है जिससे पूरा सफर निकल जाता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिस लड़की के चक्कर में मैं पिछले 1-1.5 साल से था। हाँ चक्कर ही बोलेंगे उसको, प्यार नहीं। जो भी प्यार पूरे नहीं हो पाते ना उन्हें हम चक्कर ही बोल देते हैं, है ना। प्यार पूरे होने का केवल और केवल इतना ही मतलब है कि आपने जिस लड़की को आई लव यू बोला था उसके घर पर आप बैंड बाजे के साथ पहुंच पाए। आगे शादी चले ना चले उससे प्यार के पूरे और अधूरेपन पर कोई असर नहीं पड़ता। कल उस लड़की से मैं आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। बड़ी अजीब सी शर्त रखी थी उसने अपने आखिरी मुलाकात की। उसने कहा था कि मुझे नहीं पता, मैं बस पूरा एक दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। हम मिलते दिन में ही थे वैसे, रात में उसको अपने घर जो जाना होता था। वो अपनी बुआ फूफा के साथ दिल्ली पे रहती थी और मैं लखनऊ में। लखनऊ से दिल्ली की दूरी ट्रेन में रात भर में तय की जा सकती है। कभी कभी बड़े ही रैंडम प्रोग्राम बनते थे हमारे। एकदम से पता चलता था कि बुआ फूफा एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और ऐसे में कई बार मैं बिना रिजर्वेशन के ही लखनऊ चल देता था। आधा दिन बिताने पर पहुंचता था और रात को फिर निकल जाता था। जब भी बुआ फूफा का एक दिन से ज्यादा का प्रोग्राम बनता था तो वो घर पर किसी ना किसी पड़ोसी वाली दीदी या भाभी के रहने का इंतजाम करके जाते थे। सबसे सही प्रोग्राम वही रहता था वैसे, जब वो सुबह जाके शाम वापस आने वाले हो, ऐसे में हमें एक पूरा दिन साथ में मिल जाता था। दिन भर हम घर पर ही रहते और शाम को कोई टाइम पास सी मूवी देखने निकल जाते। टाइम पास इसलिए क्योंकि उसको सीरियल या मूवी जरा भी पसंद नहीं थी। हाँ एक बात और थी, उसको आइटम सॉन्ग्स बहुत पसंद थे क्योंकि वो शादी वादी में डांस में बड़े काम आते थे। वो पंजाबन थी, उसको पता था कॉलेज खत्म होते ही उसकी शादी हो जाएगी। शादी जल्दी ना हो जाए इसलिए उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में एनरोल किया था। मुझको अक्सर मजाक में बोलती थी, देखो मैं तो शादी करूंगी और अपने पति को प्यार भी करूंगी, तुम्हारे लिए जिंदगी भर रोऊंगी नहीं, तुम भी मत रोना, सब भूल जाते हैं एक दिन टाइम पास के बाद, सब टाइम पास ही हो जाता है। इस बात पर मैं बहुत हंसता था और कहता था हो जाएगी हमारी शादी, और नहीं भी हुई तो टाइम पास तो हो ही रहा है। इस पर वो थोड़ा नाराज होने का नाटक करती थी और बोलती लाइफ भी टाइम पास ही तो है, फालतू में इतने टेंशन। एक दिन ये बोलने के बाद उसने मुझे गले से लगा लिया और मेरे कान में काट कर कान में फुसफुसाई। अब ये टीपी क्या है, टाइम पास बुद्धू कहीं के? वो ये बोलने के बाद और मैं ये सुनने के बाद थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप हो जाते थे और टाइम को पास होने देते थे। कभी कभी सुबह नाश्ते से लेकर रात का खाना हम साथ में बनाते थे, आवाज तेज करके टीवी देखते। वो जब नहा के निकलती तो मैं उसको बोलता कि बुआ की कोई साड़ी पहन कर दिखाओ। वो पहन कर दिखाती और मैं वहीं ड्रेसिंग टेबल में बुआ का थोड़ा सा सिंदूर उसकी मांग पर लगा दिया करता था। लो हो गई हमारी शादी, हम दूसरी शादी सबके सामने करेंगे जब तुम बारात लेकर आओगे, वो खिड़की से खिड़की भर आसमान को देखती हुई कहती। हम सभी की पहली शादी यूं ही कभी अकेले में हो जाती है, फालतू में ही हम बैंड बाजे वाली शादी को अपनी पहली शादी बोलते हैं और हम हर साल उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। इसके बाद हम बहुत देर तक रोते, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत देर तक। हर बार नाराज होके वो बोलती तुम क्यों करती हो ये सब बातें बार बार, हाँ अगर हमारी शादी नहीं हुई तो? इस बात का कोई जवाब नहीं होता था मेरे पास। वो बुआ का घर मुझे एक दिन के लिए अपना सा लगता था, कभी ऐसा लगता नहीं था कि मेरे और उसके सिवा कोई वहां रहता भी है। ऐसे ही किसी बुआ या मौसी या अपने घर में बिना शादी किए एक दो दिन किसी के साथ रहने की बात अलग ही होती है, अच्छी या बुरी मुझे नहीं पता, बस अलग होती है, अलग। हर बार जब हम ऐसे रहते तो वो हिसाब लगाती रहती, देखो हम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक साथ रह चुके हैं, मैं पूरे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ तो रहेंगे ना शादी के बाद, मैंने कहा। नहीं शादी से पहले रहना है मुझे। क्यों शादी से पहले? क्यों? इसलिए कि अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो क्या? तो मैंने खींच कर पूछा। नहीं हुई तो कम से कम जब भी मैं घड़ी देखूं मुझे ये ना लगे कि इस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रही। मैं समझा नहीं, मतलब ये बुद्धू कि मान लो मुझे रात में 3 बजे तुम्हारी याद आई तो मैं ये सोच पाऊं कि एक बार हम रात के 3 बजे साथ रह चुके हैं, ये बहुत अजीब है, मैंने कहा। हाँ अजीब है तो क्या हुआ, प्रॉमिस करो अगर हमारी शादी हुई या नहीं हुई तो एक बार तुम मेरे साथ रात भर रुकोगे। ये क्या कर वो रोने लगी और मैंने भी प्रॉमिस कर दिया। इसके बाद हम वो सब कुछ करते जो हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाता कि हमारी शादी हो चुकी है। ये सिलसिला उसके पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने से 2 महीने तक चलता रहा। मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था और अभी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था, हम दोनों को मालूम था कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन जब भी पता हो कि सब खत्म होने वाला है तो उस एक दिन का इंतजार करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सबसे पहले कभी हमारी पहली मुलाकात भी हुई थी, जानना चाहोगे कैसे? वैसे तो मुझे अपनी इंटेलिजेंस पे पूरा भरोसा था कि मेरा इस जन्म में डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नहीं होगा, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा था। डीसी के पेपर का नुकसान बस इतना था कि वो दिल्ली में होता है, और मेरा एक ऐसे इम्तिहान के लिए दिल्ली जाने का कतई मन नहीं कर रहा था जहां मेरा होना ही नहीं था। अरे 15% तो सीट थी केवल दिल्ली के बाहर वालों के लिए। खैर, घर वालों ने टिकट करा दिया था और लखनऊ शताब्दी भी चलने शुरू हो गई थी। मैं चल दिया। वैसे तो मैंने अपने फिजिक्स के नोट्स निकाल कर सामने वाली सीट का फ्लैप खोलकर उस पे रख दिए थे और ट्रेन चलने का इंतजार कर रहा था कि तभी पड़ोस वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। लखनऊ से कानपुर आने तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी या देख नहीं पाया। वो वॉकमैन में गाने सुन रही थी। कानपुर तक आते आते उसके वॉकमैन की शायद बैटरी खत्म हो गई। कानपुर स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले उसने मुझसे कहा, एक्सक्यूज मी। ये सुनकर मैं उतना ही खुश हुआ कि जितना कि ट्रेन में एक अनजानी लड़की का पहले बात शुरू करने की वजह से कोई भी लड़का खुश हो सकता है, कोई भी लड़का। मैंने बोला, हाँ बताइए, क्या आप मेरे लिए प्लीज बैटरी और अंकल चिप्स ला सकते हैं? वैसे तो मैं कभी ट्रेन से नीचे नहीं उतरता था, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। वो तुरंत पैसे देने लगी। मैंने कहा, पहले ले आने दो ना, ले लूंगा पैसे। उसने कुछ नहीं कहा। मैं उतर तो गया, लेकिन पहली बार ऐसे बीच में उतरकर बड़ा ही डर लग रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और एक दुकान पे चिप्स तो मिल गया, लेकिन बैटरी नहीं मिली। लेने देने में ट्रेन चल पड़ी और मैं भागा, लेकिन अपने डिब्बे तक नहीं पहुंच पाया। मुझे 2-3 डिब्बे पहले घुसना पड़ा। जब मैं डिब्बे क्रॉस करके अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा वो बड़ी परेशान सी थी। मैंने बैठते ही चिप्स उसके हाथ में दिए और कहा, 15 रुपए। इस पर वो बोली, चिप्स के चक्कर में अपना एग्जाम छोड़ देते क्या तुम, पागल? मैं समझ नहीं पाया कि उसको मेरे पेपर का कैसे पता चला। उसने अपने बैग से 15 रुपए निकाले और मुझे देते हुए कहा, थैंक यू। और ये बोलकर उसने मुझे चिप्स ऑफर किए। मैंने भी बिना हिचकिचाए 2 चिप्स उठा लिए। शताब्दी में बाहर से चिप्स बेचने वाले नहीं आते हैं, उसने ये कहा। इस पर मैं कुछ नहीं बोला और फिजिक्स के नोट्स पलटाने लगा। इंजीनियरिंग का पेपर है? हाँ। ऑल द बेस्ट, लो चिप्स लो। मैंने इस बार मना कर दिया तो बोली, ले लो, चिप्स से मस्त टाइम पास होता है। एंड आई हेट फिजिक्स। ये सुनकर मैं हंसा और बोला, मी टू। इस पर हम दोनों एक साथ हंसे। थोड़ी देर बाद वो बोली, कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन? इस सवाल से कोई लड़का जितना खुश हो सकता है, मैं उतना ही खुश हुआ। ऑफ कोर्स यू कैन, मैंने कहा। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? इस सवाल पे मैं थोड़ा चौंका, लेकिन पहली बार किसी बंदी ने ऐसा पूछा था तो मैंने बता दिया कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तैयारी के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। फिर मैंने भी कुछ पर्सनल सवाल पूछे और उसने भी बड़े आराम से जवाब दिए, जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। फिर एकदम से जैसे उसने कुछ याद आया हो और उसने एकदम से बोला कि, आई एम सॉरी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे नोट्स पलट के देखे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं थोड़ा खिड़की से मुड़कर उसकी तरफ बैठ गया और कहा, कोई बात नहीं, तुम भी पेपर देने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना यार इंजीनियर, बहुत बोरिंग पढ़ाई होती है। इसके बाद मैंने अपने फिजिक्स के नोट्स नहीं उठाए। जाने से पहले मैंने उससे नंबर मांगा बात करने के लिए, तो उसने कहा, ये ट्रेन में शुरू हुआ था, इसे यहीं ट्रेन में ही खत्म करते हैं, है ना? यार मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या बात हुई। एक तो जान पे खेल के मैं इसके लिए चिप्स लेने गया, उस पर भी इसने सीधे सीधे मना कर दिया। दिल्ली स्टेशन आने वाला था, लोग एक एक करके उठ रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि पूरा टाइम ये मौज लेते रही और मैं ही बेवकूफ हूं। कल के पेपर के लिए कुछ पढ़ लिया होता यार, शिट। वो सामान लेकर खड़ी हुई, मैं सीट पर सबके उतरने का इंतजार कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर उसने कहा, अपने नोट्स कभी पीछे से भी पढ़ा करो, फिजिक्स इतनी बोरिंग भी नहीं होती है। मैंने फटाफट अपना रजिस्टर पीछे से खोला, उस पे एक नंबर लिखा था और नंबर के नीचे लिखा था गरिमा। केवल 2 से 4 बजे के बीच ही फोन करना। उसका नाम गरिमा मुझे दुनिया का सबसे अच्छा नाम लग रहा था। मैं मुस्कुराया और मैंने इशारे से कहा, आई विल कॉल यू। अगले दिन पेपर का रिजल्ट तो मुझे पता ही था, बस मैं पेपर निपटा कर पीसीओ में जाकर खड़ा हो गया और वो नंबर मिलाया। फिर हमारी वही बात हुई जो पहली बार फोन कॉल पर हो सकती है। उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ये तो याद नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए ये बिल्कुल नया और अलग एक्सपीरियंस था। वो होता है ना कि दोनों जानते हैं कि कुछ है, बस अक्सर बोलते बोलते रुक जाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ जो लड़के लड़की के बीच में दुनिया में पहली बार हुआ हो। तो कुछ इस तरीके से हमारी पहली मुलाकात हुई। अच्छा, आपको वो 24 घंटे वाली बात याद है? हाँ याद है। हाँ तो अक्सर मैं मौका लगाकर दिल्ली जाने लगा था। गरिमा भी वहां अपने बुआ फूफा से नजर बचाकर छुपाकर मुझसे फोन पे बात करने लगी थी। जब भी मैं शताब्दी में बैठता तो मुझे गरिमा की याद आती। जब भी किसी लड़के को स्टेशन पर चिप्स खरीदते देखता तो मुझे वो DCE का इम्तिहान याद आता, वो फिजिक्स के नोट्स याद आते। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन वैसे हो चुका था, DCE में तो वैसे होना नहीं था, ले दे के लखनऊ के ही किसी कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग शुरू कर दी। तब तक मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए आजकल की तरह हर स्टेशन क्रॉस करने के बाद हम SMS नहीं करते थे। अब सोच के बड़ा अजीब लगता है यार कि बिना मोबाइल के भी एक दुनिया थी। लोग तब भी बात किया करते थे, बल्कि ज्यादा बात किया करते थे, उलझे भी रहते थे एक दूसरे में, मोबाइल में नहीं। अच्छा, गरिमा की शादी तय हो गई थी। कैसे हो गई, क्या हुआ, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गरिमा जैसी लड़कियों की शादी यूं ही एक दिन तय हो जाती है। ऐसे ही इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का लड़का देखते रह जाता है। ऐसे किस्से खत्म तो होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो आखिरी मुलाकात कैसी होती है, आखिरी मुलाकात कैसी रहती है। गरिमा और मुझे दोनों को ही पता था कि शादी हो ही जानी है। वो अपनी शादी का कोई भी मजा स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया था और अपने साथ 24 घंटे रहने की जिद की थी। उसने बताया कि उसने अपनी सहेली की शादी का बहाना बना दिया है और वो एक रात के लिए घर से बाहर आ सकती है। सच बताऊं तो मेरी उसके लिए या उसके साथ होटल में जाकर रहने की हिम्मत नहीं थी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत चीप लग रहा था। लेकिन गरिमा की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। मैंने होटल की एंट्री की, वहां पर साथ में रुकने के लिए रिलेशनशिप वाला कॉलम भरना था। मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से वाइफ भरा। काश कि वो रजिस्टर का पन्ना मैं फाड़ पाता। कमरे में आते ही मुझे बहुत जोर के रोना आया। बहुत देर रोने के बाद जब हमें होश आया तो रात के 11 बज चुके थे। गरिमा घड़ी देखते ही बोली कि देखो, हम आज तक कभी 11 बजे के बाद साथ में नहीं रहे थे, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। हमारे पास आज का दिन हमेशा रहेगा। उसकी ये सब बातें हालांकि मुझे समझ नहीं आती थी। वो खाकर ब्रश करने बाथरूम में चली गई और मुझे भी ब्रश करने को कहा, पर इस पर मैंने उसे बताया कि मैं रात को ब्रश नहीं करता, तो उसने मुझे प्यार से डांटा और कहा कि अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद कर लिया करना, नहीं तो बीबी भाग जाएगी। जब वो ब्रश कर रही थी तो मैंने टीवी चला लिया। इस पर वो बहुत नाराज हुई कि टीवी देखने के लिए पूरी उम्र बची है, इसलिए मैं आज का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूं। बेड पर आते ही वो बोली, कल सुबह के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे ना। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये बोला, हाँ कभी नहीं मिलेंगे। अगर मेरा पति बहुत खराब निकला और मैं तुम्हारे पास लौटना चाहूं तो तुम मुझे वापस आने दोगे ना? इस बात का कोई जवाब नहीं होता है, वरना मेरे पास था। फिर भी मैं बोला, हाँ तुम कभी भी वापस आ सकती हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत अच्छा निकलेगा। ये सुनकर मुझे बहुत जोर के गले लगा लिया और बोली, कितना भी अच्छा हो तुम्हारे जैसा नहीं होगा। और ना ही तुम्हें मेरी जैसी बीवी मिलेगी, समझे? वो जाने से पहले ही जाने का मन बना चुकी थी। मिस आखिरी रात में कुछ ऐसा नहीं चाहता था जिसकी वजह से मुझे बाद में पूरी जिंदगी बुरा लगता रहे। हम बहुत देर तक चुप रहे। फिर मैंने कहा, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, तो उसने मना कर दिया कि वो रात को सोकर वेस्ट नहीं करना चाहती। थोड़ी देर में उसने फिर से घड़ी देखी और कहा, 2 बज गए हैं, सुबह के 8 बजने में केवल 6 घंटे बचे हैं। अब मुझे बस ऐसा लग रहा था कि सुबह के 8 जल्दी बजे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये 24 घंटे साथ में रहने में थोड़ी खींच मच रही थी। इसके बाद उसने कहा, मुझे फील करना है तुम्हें। मतलब कि मुझे फील करना है तुम्हें। अब क्यों, अब अपने पति को फील करना? नहीं, जिनको इतना प्यार किया मुझे पता तो होना चाहिए कि वो फील करना कैसा था। इसके बाद उसने मुझे और मैंने उसे पहली बार फील किया। फील करने के बाद वो बोली, वी वर परफेक्ट। वह फिर से रोने लगी और दोबारा बोली, मैं वापस आऊंगी तो एक्सेप्ट कर लोगे ना मुझे? मैं बोला, मैं तो वेट करूंगा तुम्हारा, तुम सोच लो तुम वापस आ पाओगी। वो वही बोली जो ऐसे मौके पर हर एक लड़की बोलती है जो कभी वापस नहीं आती, पक्का आऊंगी एक दिन। और वो दिन आज तक इस दुनिया में नहीं आया। केवल 1 घंटा बचा है, उसने रोते हुए कहा, मेरे बाल में तेल लगा दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरे बालों में तेल लगाया और बाल कटवाने को कहा। बताया कि उसे मैं केवल छोटे बालों में ही अच्छा लगता हूं। जब वो बालों में तेल लगा रही थी तो मैंने उससे कहा, हमें एक दूसरे को फील नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ किसी और को अपने से पहले नहीं देखना चाहती थी, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। इसके बाद उसने बताया, 8 बजने में 15 मिनट है। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन मेरा कुछ सुनने का मन नहीं था। बस कभी कभी कुछ बोलने का मन नहीं होता है ना, वैसा ही। 8 बजते ही उसने आखिरी बार मेरे माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, 24 घंटे पूरे हो गए, एक आखिरी प्रॉमिस करो मुझसे। उसने कहा, बोलो क्या प्रॉमिस? सच्चा प्यार करते हो ना तुम? हाँ। प्रॉमिस क्या करना है बोलो। एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना, बिल्कुल मेरे जैसी। नहीं ढूंढूंगा। ढूंढ लेना तुम्हें मेरी कसम। एक और आखिरी प्रॉमिस करो मुझसे। कितनी बार प्रॉमिस कराओगी अब? क्या मुझे या मेरे घर वालों को कभी कॉल नहीं करोगे तुम? इस बात पर मुझे रोना आ गया। मैं बस इतना कह पाया, कभी बहुत याद आई तो भी नहीं। नहीं तो भी नहीं। हमारे प्यार की वजह से मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना मेरी जान। ये कहकर वो मुझसे आखिरी बार लिपट गई और बोली, लव यू फॉर एवर। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय प्रॉमिस करने के और कहने के। मैंने भी वही किया, कभी भी फोन ना करने का वादा कर लिया। लेकिन एक वादा भी मैंने उससे मांगा कि वो कहीं भी रहे, मेरे बर्थडे वाले दिन वो मुझे जरूर फोन करेगी, साल में एक बार ही सही। उसने भी प्रॉमिस किया कि वो करेगी। आज भी बर्थडे वाले दिन मुझे सुबह से शाम तक उसके कॉल का एक इंतजार रहता है। वो नहीं आता, मुझे मालूम है, मैं अकेला नहीं हूं, किसी को भी नहीं आता वो एक कॉल जिसका वादा कभी किसी ने किया था। कहां से कहां पहुंच गया मैं। दिल्ली से लखनऊ गरिमा से आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। ट्रेन कोहरे की वजह से करीब 5-6 घंटे लेट थी। सबसे ऊपर वाली सीट पर एक लड़की थी, याद है ना, जो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थी। उसकी नजर बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने पर थी जिसमें हीरो हीरोइन के बारे में चटपटा मसालेदार लिखा होता है। हाँ, उसको जो हीरो पसंद था उसके अफेयर वाली खबर को वो ये मान लेती थी कि ये अखबार वाले हैं, कुछ भी छाप देते हैं। ट्रेन के सफर की सबसे अच्छी बात क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं कभी ट्रेन में बोर नहीं होता। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके सहारे पूरा सफर बड़े आराम से कट जाता है। गरिमा से मेरी आखिरी मुलाकात में मैं उसे और वो मुझे पहली बार फील कर चुके थे। उसने मुझसे कुछ वादे मांगे थे और मैंने उससे। उसने बार बार मुझसे यही कहा था कि मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा। ऊपर से जो लड़की बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने को देखी जा रही थी, उसने मुझसे अखबार मांगा। मैंने उसको अखबार बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी नीचे वाली सीट में आकर बैठ गई। रिटायर्ड अंकल जो मेरे लेट उठने की वजह से मुझे डांट चुके थे, वो उस लड़की से उसके बारे में कुछ पूछने लगे। वो लड़की भी इस बात से थोड़ा चिढ़ रही थी और ये देखकर मैं थोड़ा थोड़ा हंस रहा था। अंकल और 2-3 लोग अगले स्टेशन पर उतर गए। लखनऊ आने में अभी 1 घंटा बाकी था। साइड वाली सीट के कपल वैसे ही दुनिया को पीछे जाते हुए देख रहे थे। बहुत पकाऊ थे ना अंकल, मैंने कहा। हाँ बहुत ही ज्यादा यार। अंकल बातों ही बातों में उस लड़की से उसके बारे में बहुत कुछ पूछ चुके थे। इतना मुझे भी पता चल चुका था कि लड़की लखनऊ की ही है, इंजीनियरिंग कर रही है, लखनऊ की ही रहने वाली है, अभी सेकेंड ईयर में है, वगैरह वगैरह। ट्रेन अभी रुकी हुई थी और ट्रेन लेट होने की वजह से अब मुझे भी भूख लग रही थी। मैं नीचे उतरकर कुछ लाने का सोच ही रहा था कि इतने में वो लड़की बोली, एक्सक्यूज मी। हाँ बताइए, क्या आप मेरे लिए प्लीज चिप्स ला सकते हैं? मैं एक दो सेकंड कुछ सोचा और कहा, हाँ क्यों नहीं। चिप्स लाने के बाद हमारी थोड़ी बहुत बात बात शुरू हुई, फॉर्मल सी बातें, वही बातों से वो थोड़ा बोर हो रही थी। उसने पूछा, कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन? ऑफ कोर्स यू कैन, मैंने कहा। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड?